ओम शांति। कल सुबह का आपका सेशन हुआ स्वयं का परिचय, सबको याद है? याद है सबको? हम सभी एक चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो अपना परिचय तो मिला, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों का भी हमें परिचय मिला। अब इन शक्तियों के लिए हम रोज सुबह घर में भी भगवान को याद करते हैं, है ना? ताकि हमारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। तो वो शक्ति के दाता जिनको हम हमेशा याद करते हैं, वो परमात्मा कौन है, कब आते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं, उनका सत्य परिचय क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारी उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हमने एक गीत सुना, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। आज तेरे नाम पर ही मनुष्य इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तू सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों है। ऐसे अनेक प्रश्न इस गीत में ईश्वर से किए गए हैं, क्योंकि शायद आज मनुष्य कंफ्यूज हो गया है, मूंझ गया है कि कितने सारे भगवान हैं, दूसरे दूसरे धर्म में तो एक ही भगवान होता है, एक ही गॉड अल्लाह होता है, लेकिन भारत में कितने सारे भगवान हैं। तो इसमें से सत्य क्या है, कौन है वो सत्य? एक बार मैं कहीं गई थी तो एक बहन मुझे कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ ने उसको कहा बेटा ये सब भगवान है हिंदू धर्म में। तो उसने कहा भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो वो बच्चा कहता है मैं मंदिर जाता हूं तो इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि किसको याद करूं, इतने सारे भगवान में मैं मेरा मन एकाग्र कहां करूं। इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उससे तो मैं और कुछ न करूं। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है और उसका कारण कहीं न कहीं मैं खुद हूं, क्योंकि मैं उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती हूं। ये उस मां का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भारत में कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं और माता पिता के पास उत्तर नहीं है। जिस तरह आप किसी गांव में चले जाओ जहां कोई आपको जानता न हो, तो आपको देख करके लोग अनुमान लगाएंगे कि भाई ऐसी पैरवाइश है तो फलानी जगह से आया होगा, ऐसे नाक नक्शे हैं तो फलानी जगह से आया होगा, अनुमान लगाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद अपना परिचय न दो तो कैसे लोगों को पता चले कि आप कौन हो। इसीलिए आज दुनिया के अंदर भी लोगों ने ईश्वर के बारे में बहुत सारे अनुमान लगाए, शायद ये भगवान हो सकता है, शायद ये भगवान हो सकता है, है ना? अब जब इतने कंफ्यूज हो गए तो जैसे गीत में कहा कि हे ईश्वर अब तू ही बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू क्या करता है, कहां रहता है। गुजरात में स्कूलों में एक प्रार्थना सिखाई जाती थी बचपन में, मने कहो ने ईश्वर केवा हसे, क्या रहता हसे सु करता हसे, मने कहो ने ईश्वर केवा हसे। कहीं ने गाई होगी ये प्रार्थना भी। तो ईश्वर को ही अभी पूछते हैं भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू कहां रहता है। तो भगवान को भी तो आना पड़ेगा, तभी तो मनुष्य जो भटके हुए हैं उन भटको हुओं को राह दिखा सकते हैं। एक बार मैंने एक कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, फिर दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, फिर तीसरी कॉलम में लिखा था कि वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, फिर चौथी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, फिर पांचवी कॉलम में लिखा था अरे कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, जहां देखूं वहां तू ही तू है, फिर छठी कॉलम में लिखा था जितने भी इष्ट देवी देवता है सब परमात्मा है, सब भगवान है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी कॉलम में पढ़ने के बाद उसने क्या कहा होगा, आखिर ईश्वर कौन है, क्या ये सभी ईश्वर है, क्या इसमें से एक ईश्वर है, ये ईश्वर है ही नहीं। तो इसीलिए कहा कि आज का मनुष्य कितना कंफ्यूज्ड हो गया है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया कि हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। तो गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, दूसरे के हाथ में पीठ आई तो कहा अरे हाथी तो दीवार जैसा है, तीसरे के हाथ में पूंछ आई तो कहा अरे हाथी तो रस्सी जैसा है, चौथे के हाथ में सुंड आई तो कहा अरे हाथी तो सांप जैसा है, और पांचवे के हाथ में कान आए तो कहा हाथी तो सूप जैसा है, सुपड़े जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये पांचों ही सत्य है? पांच में से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य किसको कहे? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपको जाकर उसको बताना है, समझाना है कि हाथी कैसा है। ये पांचों वन बाय वन जाते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी तो लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, अरे भाई, हाथी तो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, अरे भाई, हाथी तो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है, अरे भाई, हाथी तो एकदम लचीला सांप जैसा है। और थोड़ी देर के बाद पांचवा जाकर कहता है, अरे भाई, हाथी तो सूप जैसा है, पंखे जैसा है। अब पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा व्यक्ति क्या समझेगा कि हाथी कैसा है? फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि भाई, ये लोग ने तो महसूस किया ना, स्पर्श किया ना, होगा ऐसा कोई प्राणी जो घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता होगा? विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि आपने जो समझा, एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो स्पर्श नहीं किया, लेकिन पांच ने जो किया महसूस, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो पंखे जैसा हो जाता है। अब ये सातवां सूरदास थोड़ा इंटेलिजेंट था। ये बात सुनने के बाद वो क्या कहता है? अरे भाई, तूने कैसे मान लिया कि हाथी बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है? कोई व्यक्ति रंग बदल सकता है, कोई प्राणी रंग बदल सकता है, लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, ऐसा कैसे हो सकता है? और तूने कैसे मान लिया? तो छठा सूरदास क्या कहते हैं, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोले। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है, मैं तो नहीं मान सकता। कहीं हमारी हालत भी ऐसे तो नहीं हुई कि हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुण को महसूस किया, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो तो उन्होंने कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कोई व्यक्ति में कुछ महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने ब्रह्म में कुछ महसूस किया तो कहा ब्रह्म ईश्वर है। किसी ने कण कण में महसूस किया तो कहा कण कण। किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने साकार कह दिया। अब इन सब में सत्य क्या? उन ऋषि मुनियों ने जो महसूस किया, अनुभव किया, मनुष्य को बताया, हमारे पूर्वजों को बताया, हमारे पूर्वजों ने विश्वास कर लिया कि भई ये सबने तो महसूस किया, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही बोलते होंगे, विश्वास कर लिया। अब वो पूर्वज आकर के आज के जेनरेशन के लोगों को समझाना चाहते ये सब भगवान है। तो आज का इंसान जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो क्या कहता है, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते, क्या सबूत है कि इतने सारे भगवान हैं? तो मनुष्य क्या कहते हैं, अरे ऋषि मुनियों ने कहा, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का इंसान क्या कहते, मैं तो नहीं मानता हूं कि इतने सारे भगवान हो सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है। कि विज्ञान ने हर बात का सबूत दिया तो विज्ञान ही सब कुछ है। अगर आध्यात्मिक भी विज्ञान है तो सबूत दो। तो आज हम वही कसौटी आपको देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखना कि सत्य है और क्या सत्य है। तो मैं आपको कोई मत नहीं देती हूं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक कसौटी देती हूं जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखना सत्य है या नहीं है। ये कसौटी है पांच बातें कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे परमात्मा, परमेश्वर। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है, वो सर्व का सतगुरु है। तो इसीलिए कहा कि जिसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्मा संसार के अनेक चक्रों में आती है, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, ये सब चक्र में हम आते, लेकिन परमात्मा की महिमा के लिए कहा जाता वो अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नहीं खाता है। अब जन्म ही नहीं लिया तो शरीर ही नहीं है, तो अव्यक्त स्वरूप है, उसको कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त है। अब जब अव्यक्त है तो कर्म कर ही नहीं सकता है, तो कहा अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न फल भोगता है। और जब कर्म ही नहीं करता तो न पाप है न पुण्य है, पाप और पुण्य से भी परे है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो दुख हरता सुख करता है, दुख हरने वाला और सुख देने वाला। तो जो ये सभी चक्र से ऊपर है उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों को जानने वाले, इसलिए कहा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले हैं। मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले त्रिनेत्री है, और जो सृष्टि की स्थापना पालना और महाविनाश कराने वाले त्रिमूर्ति है। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति उसी को कहा जाता है जो ब्रह्मा द्वारा सृजन कराता, विष्णु द्वारा पालना कराता और शंकर द्वारा महाविनाश कराता। तो ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए किसी ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, इतनी अनंत महिमा है। तो ये पांचों बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमेश्वर। अब अगर एक एक मत को उठाते हैं कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे सर्वधर्म मान्य है? नहीं है। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो गीत याद आता है जो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि वो कौन रचनाकार है, वो कौन रचनाकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर रचना रची है, वो रचनाकार कौन है? कहते ना, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो क्या कहेंगे प्रकृति ही परमेश्वर है, ये कहना सही है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सही है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहता है माताएं? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है, रचनाएं कहना सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, सत्य तो नहीं है तो अज्ञान था। आगे बढ़े, क्लियर हो गई ये बात कि प्रकृति परमेश्वर नहीं है। अच्छा आगे बढ़े, दूसरी बात जब कहा जाता है कि प्रकृति, दूसरी बात जब कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये क्यों कहा? सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है, हम तो परमात्मा नहीं है, ठीक है? देखो आज मनुष्य जैसा कर्म करता है ना वैसा टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा एक कहते हैं, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते? और ये सब भी आत्मा है, पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। ये सब आत्माएं हैं, तो परमात्मा कौन है फिर? तो दूसरी बात जो कहा आत्मा सो परमात्मा, ये भी अज्ञान है, ये कहेंगे सत्य तो नहीं है तो अज्ञान ही हुआ। तो कई लोग क्या कहते हैं, नहीं सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे हम भी आत्मा एक परमात्मा से निकली है, लास्ट में परमात्मा में मिल करके एक परमात्मा हो जाएंगे। अब ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, मैटर तत्व है, तत्व तत्व में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, शक्ति है, एनर्जी है। और एनर्जी के लिए तो विज्ञान में यही कहा गया, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा के लिए भी क्या कहा भगवान ने दूसरे अध्याय में, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, तो बुदबुदे का अस्तित्व तो समाप्त हो गया ना, जबकि आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो कई लोग क्या फिर एग्जाम्पल देते, अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश हो सकता है क्योंकि यह तत्व से बना हुआ शरीर है, तत्व तत्व का अंश है, लेकिन यह तो शक्ति है, तो शक्ति का टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा के लिए कहा अजर अमर अविनाशी, लेकिन आज तक किसी ने हमें यह समझाया ही नहीं। और एग्जाम्पल कौन सा दिया, तत्व के, तत्व तत्व में मिल जाएगा, तत्व तत्व से टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन आत्मा और तत्व दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो कई महान आत्माओं ने हमें ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, हमने विश्वास कर लिया, कभी सवाल पूछा ही नहीं। सवाल पूछेगा तो श्राप मिल जाएगा, इसलिए सवाल किया ही नहीं। अरे सोचो तो सही। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा है कहना ठीक है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? अच्छा, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना ठीक है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना ठीक है? वंश है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन टुकड़े नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब ये कहां तक सत्य है? देखो, अज्ञानता के कारण हमने दो दो बातें कही। एक तरफ ब्रह्म ईश्वर है कहा, दूसरी ओर क्या कहते, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, के पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है? आपका विवेक क्या कहेगा? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य। एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ? आगे बढ़े। क्लियर हो गई सभी को? ठंडी तो नहीं लग रही है ना? किसी के मुख से आवाज ही नहीं निकलता है, ना हाथ निकलता है बाहर। अच्छा ठीक है, अब चौथी बात। चौथी बात क्या कहते हैं? कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। जहां देखूं वहां तू ही तू है, ये कहां तक सत्य है? अब अगर परमात्मा सब में है, तो कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान कहेंगे? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? है गटर में भी भगवान? अरे ऊंचे से ऊंची हस्ती, और कहां अज्ञानता के कारण हमने कह दिया कण कण में है। तब मनुष्य क्या कहते हैं? अरे नहीं, सब में परमात्मा माना, हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में ईश्वर रहता है, आत्मा भी है और बाजू में परमात्मा भी बैठा है। अब हर एक में अगर परमात्मा बैठा हो, एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है या कोई गलत काम करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं कि एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी ताकत नहीं है, फिर बैठने का कोई मतलब क्यों बैठा है? आज जैसे आपके घर में बच्चे हैं, आप सामने बैठे हो और बच्चे किसी कारण से आपस में लड़ने लग जाए, तो आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे। क्यों छुड़ाएंगे? कहेंगे बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए? कहेंगे ना। चलो आपके बच्चे नहीं है, गली में खेलने वाले बच्चे अगर किसी कारण से आपस में मारपीट करने लग जाए, तो आप देखते रहेंगे कि भाई मेरे बच्चे तो है नहीं, ये दूसरों के बच्चे? देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हैं? कहेंगे ना। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम सबके अंदर भगवान बैठा हो और मनुष्य इतने गलत काम कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, इतना झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? क्यों बैठा है फिर? अगर उसको रोकना ही नहीं है, कई लोग क्या कहते हैं, वो तो निर्लेप है ना, वो थोड़ी ये लेप छेप में आएगा। अरे जब निर्लेप है तो बैठा क्यों है? क्यों बैठा है? जब एक तरफ हम कहते हैं वो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर है, तो दया का सागर को क्या दया नहीं आती है उस वक्त? क्या कहेंगे? देखो, कोई आपको कोई बात पूछता है या बताता है और आपको मालूम नहीं है तो आप क्या कहेंगे? अरे छोड़ो ना ये झंझट को, ऊपर वाला जाने। कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? सब में बैठा हुआ वो कौन है और ऊपर वाला कौन है? एक ही है या अलग है? कभी गलती से कहा सबके अंदर बैठा हुआ है वो जाने? कहा? नहीं कहा। अनजानेपन में भी मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने। आज गीता में भी 4th अध्याय में भगवान ने ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं संसार में अवतरित होता हूं। कहा भगवान ने, अधर्म के समय पर मैं आता हूं तो नहीं होगा तभी तो आएगा। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? फिर कौन आएगा? इस अधर्म का नाश सत धर्म की पुनः स्थापना करने। आज नहीं है तभी तो इतना अधर्म बढ़ता जा रहा है। धर्म के नाम पर इंसान क्या क्या कर रहा है? आज देखो, अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। आज अगर सब में ईश्वर बैठा हो, वो गुणों में अनंत है और उसके कोई गुणों का संग का रंग में न लगे, ऐसा कह सकते हैं? हो सकता है? नहीं। लेकिन तब फिर बात आती है, मनुष्य क्या कहते, फिर सर्वव्यापी की बात भी तो शास्त्र में ही लिखा है, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था वो हमने समझा ही ना हो। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, शास्त्र में किस भाव से लिखा है? आज जैसे कोई बच्चा बाहर गांव पढ़ रहा हो, हॉस्टल में पढ़ रहा हो या विदेश गया हो और वहां से फोन करता है और माँ बाप से पूछता है, आप मेरे को याद करते हो, आपको मेरी याद आती है? तो क्या कहेंगे? अरे बेटा, तू तो हमारे दिल में रहता है, तू अलग है ही कहां हमसे, हर पल तेरी याद आती है। कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब सचमुच वो दिल में थोड़ी बैठा है, उसकी याद दिल में बैठी है। ठीक इसी तरह जब कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, माना फिजिकली नहीं है, लेकिन उसकी याद हरेक के अंदर समायु। कभी भी दुख पड़ता है तो कौन याद आता है? हे भगवान, अब ये दुख दूर करो, याद करते हैं ना। अगर भगवान अंदर ही बैठा है तो दुख होने देगा? वो तो दुख हरता सुख करता है, तो दुख होने देगा? भाव है, जैसे बच्चे को हमने कहा कि तू तो हमारे दिल में रहता है, अरे जहां देखते हैं तेरी किताबें पढ़ी है, तेरा खिलौना पड़ा है, तेरा ये पड़ा है वो, तो जहां देखे वहां तू ही तू तो है, ये कहते हैं कि नहीं बच्चे को? तो इसका मतलब सचमुच बच्चा यहां थोड़ी है, वो तो वहां है, विदेश में बैठा है। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और अगर चाली में रहते हैं लोग और घर से बाहर निकल जाए तो कितना ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना चला जाए। तो माँ क्या करेगी, बच्चे को दरवाजे तक ले जाएगी, बाहर एक कुत्ता दिखाएगी, गाय दिखाएगी और कहेगी देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएगी। अब माँ भी समझती है कोई उठा के ले जाने वाला तो नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, बाहर ना निकल जाए। जैसे ही वो घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, कुत्ता और गाय को देखता है तो क्या करता है, फौरन अंदर आ जाता है, खुश होता है, मैं सेफ हूं, मैं बाहर नहीं गया। लेकिन वही बच्चा 10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कहो बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? और हंसता हुआ निकल जाएगा, बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही उसको ले आया, वो क्या मुझे ले जाएगा, कहेगा कि नहीं? लेकिन उसी बात को उसने सत्य मान लिया था, अब समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब पाप आरंभ हुआ संसार में, तो ऋषि मुनियों ने भी देखा कि मनुष्य तो बहुत पाप करने लगा है, अब इसको पाप कर्म से रोके कैसे? तब उन्होंने भी कहा हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है ना, ताकि मनुष्य को भी डर रहे और पाप न करे। आज से 200-300 साल पहले भी लोग गांव में भी घरों में ताला थोड़ी लगाते थे, ऐसे ही चले जाते थे, पाप नहीं होता था। लेकिन जब पाप होने लगा तो ताला मारना पड़ा, हर चीज को मारना पड़ा कि नहीं मारना पड़ा? ताला भी बनने लगा, मारना भी पड़ा। कहने का भावार्थ यही है कि पहले तो मनुष्य पाप कर्म से डरते थे, आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य पाप करने से डरता था, कोई अगर उसको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था। लेकिन आज इतने पाप बढ़ गए हैं कि कोई अगर मनुष्य को याद भी दिलाता है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, है ना? वो वाल्मीकि ने क्या कहा था, वाल्मीकि जो लुटेरा था, सबको लूटता था, तो उसने एक महात्मा को पकड़ा, तो महात्मा ने कहा कि भाई तू क्यों ये पाप करता है, तो कहा मेरे परिवार को पालने के लिए, तो कहा जब परिवार से पूछ के तो आ कि तेरे पाप के भागीदार वो बनेंगे, जब पाप का फल भोगने का आएगा उस समय तेरे परिवार वाले साथ होंगे पाप का फल भोगने के लिए? कहा क्यों नहीं होंगे, उनके लिए ही तो मैं कर रहा हूं। कहा पूछ के तो आ। गया घर, माँ बाप से पूछा भाई मेरे पाप के भागीदार आप बनेंगे, तो माँ बाप ने क्या कहा, अरे बेटा तू पाप कर रहा है, ये कर्म तो तेरा है, ये फल भी तेरे को ही भोगना पड़ेगा, हम तो आज है कल चले जाएंगे और कहां जाएंगे मालूम भी नहीं, तो हम तेरे पाप का फल कैसे भोगेंगे बताओ। माँ बाप ने मना कर दिया। पत्नी से पूछा, भाई तू तो भागीदार बनेगी। कहा मैं कैसे बन सकती हूँ, कर्म तुम कर रहा है, मैं कैसे तेरे पाप के भागीदार बनूंगी। ये तो ये जन्म का साथ है, इसके बाद तू कहाँ मैं कहाँ पता ही नहीं, तो तेरे कर्म का फल मैं कैसे भोगूंगी। अच्छा फिर बच्चों से पूछा कि भाई बच्चे तुम तो मेरे कर्म के फल में भागीदार बनेंगे। कहा पिताजी आप चले जाएंगे, हमको क्या मालूम आप कहाँ गए जो हम आपके साथ भोगने के लिए आए। सबने मना कर दिया। तो इसीलिए जिस परिवार के लिए भी आप लोग पाप कर रहे हैं, कई लोग बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी जमा करना है। अरे हर आत्मा अपना नसीब लेकर के आती है, आपके कमाए हुए पर अगर उसका नसीब नहीं है तो वो कैसे वो खाएंगे। उसके पहले ही या देवाला निकल जाएगा या कुछ भी, उसके नसीब में ही नहीं है आपकी कमाई, तो आप पाप करके फिर भोगना पड़ेगा, तब तो आपको अकेले को भोगना पड़ेगा ना। ये तो सोचो कि किसके लिए पाप कर रहे हैं। कोई आपका भागीदार बनने वाला नहीं है, तो जो भागीदार बनने वाला ही नहीं है उसके लिए आप पाप कर रहे हैं। ये कहां की समझदारी बताओ, ये समझदारी है। तो क्या करना चाहिए, अरे हरेक का नसीब हरेक के साथ है। आपके पास में भी अगर उसका जितना लेना देना होगा उतना ही लेगा, उसके बाद आगे नहीं लेगा। इसीलिए तो कहावत है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। और टैक्स के कारण कितना राजा खा रहे हैं, तो किसकी राजा खाए किसकी आग जलाए। आग लगी सब कुछ जल गया। तो हर एक के कमाई जो किया है उसका फल हर एक को खुद को ही भोगना है। तो इसीलिए पाप क्यों करो, क्यों पाप कर रहे हैं और अपना खाता क्यों खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कण कण में व्यापक एक भावनात्मक सत्य था, सिद्धांतिक नहीं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चौथी बात, जब कहते निराकार है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है कि चित्र को देखकर कहेंगे चक्रवात है। और शांत प्रकृति दिखाना है, जैसे हवा चल ही नहीं रही है, तो पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देगा कि हवा चल ही नहीं रही। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना कोई चीज है इस संसार में। तो क्या सचमुच भगवान का नाम रूप आकार नहीं है, ये कह सकते हैं? उसका भी नाम रूप आकार है, तो वो कौन सा है? तो जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशुओं का पिता पशु है, पक्षियों का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम माना लिंग माना आकृति, ज्योति की आकृति है ना ज्योतिर्लिंगम। नाम दिया उसको सदाशिव। सदाशिव यानी जो गुणवाचक नाम है, सदा कल्याण करने वाले, कल्याणकारी है। शिव माना कल्याण करने वाला, शिव माना शांति का सागर, शिव माना पवित्रता का सागर, है ना। तो परमात्मा का जो नाम है वो भी गुणवाचक है। आज मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होता है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे, है ना। किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद। तो नाम गुणवाचक नहीं है। आजकल तो मनुष्य ने देवताओं के नाम अपने ऊपर रख दिए। किसी का नाम होगा राम भाई, कृष्णा भाई, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं हुई तो डबल नाम चाहिए, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, डबल नाम, है ना, गौरी शंकर, डबल नाम। विशेषता एक जैसी भी नहीं होंगी, एकदम विपरीत होंगे। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, कर्तव्यवाचक नहीं है। और साउथ में जाओ ना तो तीन तीन नाम, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, तीन तीन नाम लगा दिए। तो मनुष्य एक नाम रखे, है ना, वो भी अगर गुणवाचक हो तो ठीक है, लेकिन आज मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं, परमात्मा का नाम गुणवाचक है। और इसलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम सारे भारत में फैले हुए हैं, और वो नाम भी गुणवाचक है। सोमनाथ, जो सोम अमृत पिलाने वाला, विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ है, है ना। इसीलिए दिखाते हैं कि शिव सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज, जिसकी पूजा करते हैं। लेकिन यहां भारतवासियों ने गलती कर दी है, कहा उसको देवों का भी देव महादेव, के सभी देवताओं का भी महादेव कौन है, शिव को कहा। लेकिन यहां भारतवासियों ने गलती कौन सी कर दी, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लिया। अरे जहां नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां स्वरूप अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां कर्तव्य अलग है, शिव को कहा भोलानाथ, कल्याण करने वाला, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता, तो एक भोलानाथ एक प्रलय नाथ। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है बताओ, एक हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब भी कोई मंत्र देता है ना, ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको ओम नमः शंकराय बोला किसी ने, नहीं बोलते हैं। ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शंकराय जपते हैं क्या कभी, नहीं जपते। शिवरात्रि मनाते हैं भारत में, महाशिवरात्रि, उसको शंकर रात्रि कहा, एक है तो कहना चाहिए, नहीं कहते। शंकर को त्रिदेव में से एक देव बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और शिव को कहते हैं त्रिदेव है, ये तीनों देवताओं के ऊपर है, त्रिदेव त्रिमूर्ति। तो शिव और शंकर एक नहीं, शंकर को पूरा परिवार दिखाया, माँ पार्वती है, दो बच्चे हैं गणेश जी कार्तिकेय, पूरा परिवार गृहस्थ जीवन में दिखाया। शिव जी गृहस्थ ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए ये शिव और शंकर अलग है, एक नहीं है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई कि नहीं, एक ही समझना है, नहीं क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो ही भारत वालों की बात, लेकिन भारत के अंदर कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, नॉर्थ में जाओ तो श्री राम श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा मिलेगी, लेकिन साउथ में जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा ज्यादा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी। तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ, गणेश जी की पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ, मुरुगन की पूजा मिलेगी, कार्तिकेय की पूजा मिले। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसलिए उसको देवों का भी देव महादेव कहा। तो हिंदू धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति कौन है? परमात्मा। इसीलिए पहला तो सर्वधर्म मान्य, क्या उसको दूसरे धर्म वाले भी स्वीकार करते हैं? तो ये तो ही भारत वालों की बात, ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना उसको। लेकिन भारत से बाहर इस्लाम धर्म में जाओ, जहां मूर्ति पूजा नहीं होती है, परंतु जब मुसलमान लोग भी मक्का जाते हैं हज पर, तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का निराकार है, और उसको ही वो अल्लाह मानते हैं, और इसीलिए हर साल उनकी हज यात्रा निकलती है। हज में जाना होता है और कहते हैं हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है वहां जाकर क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। फिर वहां एक शैतान का पत्थर होता है, उसको पत्थर मारते हैं, और फिर ये काबा के पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि जब इस्लाम धर्म में ईश्वर के मत को लेकर के मतभेद होने लगा, तब ऊपर से ये पत्थर गिरा था, और मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से उसकी स्थापना मक्का में की थी, जो बिल्कुल निराकार। और इसीलिए वो मानते हैं कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन करना चाहिए। वहां जाने के बाद उसको चूमते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, और खाली मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। जिसको भारतवासियों ने कहा मक्केश्वर, मक्का का ईश्वर या मुसलमानों का ईश्वर कौन है? वो निराकार काबा का पवित्र पत्थर। और उसको कहा जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है कि अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है। नूर माना प्रकाश तेज, ज्योति माना जिसको हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा, ज्योति माना प्रकाश तेज, नूर माना भी प्रकाश, तो बात एक ही है कि अलग है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, तो क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है कि जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, यीशु ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बच्चा हूं। गॉड इज लाइट, लाइट माना प्रकाश। तो जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाओ तो गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आता, अकाल मूरत है जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, वो निराकार और गुरु नानक देव ने कहा एक नूर माना एक प्रकाश है, प्रकाश है। तो बात तो एक ही हो गई। इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जो दसवां गुरु उनका बताते, उन्होंने शिव की महिमा गाई थी, शिव की पूजा की थी। और आगे जाओ तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा सिद्ध शिलापति का ध्यान करते, सिद्ध शिला का। सिद्ध शिला यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो कौन है? तो कहा निराकार है। इसीलिए महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में है। वो भी किसको याद कर रहे हैं? सिद्ध शिला को याद कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, और आगे जाओ, महात्मा बुद्ध, उसने कभी मूर्ति पूजा नहीं किया, न किसी से करवाई, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है निराकार, और उसी को ही वो ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। इसीलिए उनके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं वो ऊर्जा के स्रोत से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी माना जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तो सर्व धर्म मान्य कौन हुआ? पारसी धर्म में चले जाओ तो पारसी लोगों के लिए कहा जाता, जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेके आए थे, अखंड ज्योति स्वरूप। और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन हुआ? जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने कहा सबका मालिक एक, हाथ ऊपर किया। तो जिसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, ये अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो एक ही। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? वो एक ही। जब सबने वही कहा तो हम लोग रास्ता कहां से भटके? जब साईं बाबा उसके तरफ इशारा कर रहा है सबका मालिक एक, श्री कृष्ण ने उसकी पूजा की, श्री राम ने उसकी पूजा की रामेश्वरम में, सबने उसको याद किया, तो हम साईं बाबा को माने? वो तो ऐसे ही हो गए ना, वाया वाया। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, तो भिखारी रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आए खाली हाथ न जाए, सबको कुछ न कुछ देना है, कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, उसको मैं भी देख लूं, तो मुझे भीख मांगनी न पड़े, मैं वहीं स्रोत से प्राप्त करूं। तो जल्दी पहुंच गया, द्वारपाल से पूछा तुम मुझे बताओ राजा इस वक्त कहां होंगे और क्या करते होंगे? क्या राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे? तो कहा जरूर वहां कोई स्रोत होगा जहां से प्राप्त करते होंगे, तो आज तो मुझे देखना ही है कि वो स्रोत कौन सा है। तो कहा मैं वहां जा सकता हूं? तो द्वारपाल ने कहा क्यों नहीं जा सकता, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा। चला गया मंदिर में, पीछे जाके बैठ गया, देखता रहा। तो थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, कि हे प्रभु मेरी झोली भर तू रखना ताकि मैं सबकी झोली भर सकूं। तो भिखारी उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी? तो कह रहे आज पता चले राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं हम, वो उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है। चलते चलते भिखारी के विचार चलने लगे कि राजा तो पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, अब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे, तो इसका मतलब श्री राम के बहुत सारे भक्त उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को दिया होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी इतने सारे को देना होता है, एक हिस्सा मेरे पास। बोले ये वाया वाया में कम हो रहा है। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो रामेश्वरम में शिव को याद किया था, शिव की पूजा की थी, तो शिव आराध्य है। तो फिर वो भिखारी सोच में पड़ गया, इसका मतलब शिव सबसे ऊपर सर्वोच्च है, स्वयंभू है, शंभू है, उसने राम को दिया, राम ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने राजा को दिया, राजा ने हमको, ये वाया वाया में सब कम हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट जाऊं भोलेनाथ के पास ही। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे कि वाया वाया में अगर अटके हो तो आज से क्या करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो, ने फुल प्राप्ति होगी। ठीक है, फुल प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी चक्र से भी वो पर है, सर्वोच्च शक्ति है, और शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाते हैं जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख होती है अर्थात ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला भी वही है, और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ाते अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता वही है। तो देवों का देव सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान वही परमेश्वर है। तो अभी थोड़ी देर याद करें, बैटरी चार्ज करनी है तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, कनेक्शन सही होना चाहिए। इधर उधर कनेक्ट करेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, डिस्चार्ज होती गई ना, अनुभव कर लिया जीवन में डिस्चार्ज ही होती गई, क्योंकि सही कनेक्शन ही नहीं था। अब सही कनेक्शन से बैटरी को फुल चार्ज करो। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, अपने ध्यान को उस परमात्मा में लगाना है।